ണമോ സിദ്ധാണം ണമോ ആയിരിയാണം ണമോ വജ്രായാണം ണമോ ലോയേ സർവസാഹുണം. आज यहाँ जैन सेंटर ऑफ साउथ फ्लोरिडा में हम आज जैन भूगोल संबंधी ये पहला क्लास या पहला सेशन प्रारंभ कर रहे हैं. क्या है जैन भूगोल, दुनिया कैसी है, दुनिया किसे कहते हैं, सृष्टि का क्या स्वरूप है, इसे किसने बनाया है, इन सब बातों को हम जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं. आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि साहब हमने दुनिया देखी है. आपने कौन सी दुनिया देखी है और मैं कौन सी दुनिया आपको दिखाने वाला हूँ, दोनों में जो अंतर है वो अंतर अपने को यहाँ स्पष्ट ख्याल में आएगा. जो कोई भी रचना, जो कोई भी चर्चा यहाँ की जा रही है, उस सभी चर्चा का आधार सर्वज्ञ भगवान का केवल ज्ञान है. माने केवल ज्ञान को यदि हम मद्देनजर रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो हमारे को इन सब बातों के संदर्भ में कोई शंका खड़ी नहीं होगी, नहीं तो हम उसमें प्रश्न चिन्ह ही खड़े करते रहेंगे. आपको यदि कोई शंका खड़ी होती है, कोई चित्त में जिज्ञासा होती है, आप बीच में पूछें, बीच में हाथ खड़ा कर ले कि ये मेरे को हमारे को समझ में नहीं आया है या क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करें. जो विषय हम यहाँ चलाने जा रहे हैं, आप उसको संशय से नहीं, श्रद्धा से स्वीकार करें. दिनागम में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषय को हम सिर्फ श्रद्धा से स्वीकार कर सकते हैं, उनको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते. लेकिन प्रत्यक्ष करने वाले कोई ना कोई इस दुनिया में जरूर है. जो प्रत्यक्ष करने वाले हैं उनको कह रहे हैं केवल ज्ञानी. वे केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ परमात्मा हैं. देखिए, मैं यहां एक आकृति की आपके सामने चर्चा करता हूं. देखिएगा उधर से, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक. हाँ, बल्कि दिख रहा था शायद महेंद्र भाई, दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है. ओह ठीक. अब लेकिन इधर थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, कोई खास बात नहीं है. खैर चलिए, आप सभी ने ये आकृति कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी. देखिए आकृति आप लोगों ने, क्या है ये? जैन सिंबल. बिल्कुल सही कहा आपने, दुनिया में इसे जैन सिंबल के नाम से कहा जाता है, जैन प्रतीक के रूप में बोला जाता है. और कहीं भी ये चिन्ह किसी भी जैनी के यहाँ देखा जा सकता है, किसी भी जैन फंक्शन में देखा जा सकता है, जैनियों के इनविटेशन कार्ड में देखा जा सकता है. ये है तीन लोक. तीन लोक की ये रचना है. इस लोक को बनाने वाला कोई नहीं है. इसकी आकृति और रचना के संदर्भ में अभी गहराई में जाकर के हम बात करेंगे. इस दुनिया को किसने बनाया है? कोई नहीं है इस दुनिया को बनाने वाला. दुनिया में ऐसी बात तो चलती है कि कोई ना कोई ईश्वर ऐसा होगा जिसने बनाया होगा. आखिर किसी ने तो बनाया होगा सर. लेकिन हम ये कहते हैं कि ये दुनिया छह द्रव्यों के समूह को कहते हैं. विश्व की परिभाषा क्या है? षट द्रव्यात्मको लोक है. ये लोक कई से लोए, ऐसी व्युत्पत्ति आती है भगवती सूत्र में. ये लोक कई से लोए, धवला में इस तरह की शंका उठाई, लोक किसे कहते हैं, को लोक है? जवाब दिया वीरसेन स्वामी ने, लोक्यंते उपलब्ध्यंते यस्मिन जीवादेय पदार्थ स लोक है. सर्वार सिद्धि के अंदर पूछा कि लोक किसे कहते हैं, तो कहा धर्मा धर्मादिनी द्रव्याणी यत्र लोक्यंते स लोक है. कुल मिलाकर के लोक के संदर्भ में यही कहा गया कि जहाँ छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। द्रव्य छह हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। माने यदि इन छह द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं तो दुनिया बनाने वाले को छह द्रव्य बनाने पड़ेंगे तो दुनिया बना पाएगा। जो लोग ऐसी बात कहते हैं कि इन्होंने दुनिया बनाई है, इन्होंने दुनिया बनाई है, हम उनसे पूछते हैं जिस किसी भी ईश्वर के बारे में, लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो हम पूछते हैं सृष्टि की रचना के पहले ब्रह्मा जी थे या नहीं? होंगे ही ऑब्वियसली, इसमें क्या है, जिसने बनाई है आखिर वो खुद तो होंगे ही ना, तो इट मीन्स जीव तो था। जीव का क्रिएशन तो उन्होंने नहीं किया, जीव तो पहले से था, दुनिया बनाने के पहले वे थे। तो अकेले खालिस आत्मा थे कि शरीर सहित थे, जैसे रूप में लोग देखते हैं, ऐसा उनका रूप था ही जो दिखता है, इस रूप में थे पहले, तो इसका मतलब शरीर भी था, इट मीन्स पुद्गल भी था। दो द्रव्य तो हुए जो पहले से थे। जिनकी बात आप कर रहे हैं दुनिया बनाने वाले के रूप में, वे चलते फिरते थे कि कहीं एक जगह पर टगे रहते थे? चलते तो थे ही, तो चलते थे तो रुकते भी थे या नहीं, कि हमेशा चलते ही रहते थे? चलते थे तो रुकते भी थे, तो चलने में सहयोगी है धर्म द्रव्य और रुकने में सहयोगी है अधर्म द्रव्य। इसका मतलब ये दो भी पहले से थे, जिस जगह पर वे थे वही आकाश है, और जो उनकी अवस्थाएं बदल रही है उसमें सहयोगी ही काल द्रव्य है। हम कहते हैं कि यदि छहों द्रव्य पहले से थे तो फिर उन्होंने कौन सा द्रव्य नया बनाया? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तीन लोक की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इस तीन लोक को बनाने वाला वास्तव में कोई दूसरा नहीं है, यह अनादि अनिधन है, स्वनिर्मित है, शाश्वत है। दौलत राम जी छेड़ाला की पांचवी ढाल में 12वें चंद में कहते हैं, किन हूं न करन धरे को, षट द्रव्य माई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। किन हूं न करे, कोई करने वाला नहीं, ना धरे कोई धारण करने वाला नहीं, और ना हरे कोई इस लोक का नाश करने वाला नहीं। तीन लोक को बनाने वाला कोई नहीं है, बिगाड़ने वाला कोई नहीं है, बनाए रखने वाला कोई नहीं है, यह अपने ही आधार से टिका हुआ है। फिर भी जब लोक की रचना की जाती है, रचना की चर्चा की जाती है, तो ये कहा जाता है कि यह लोक चारों तरफ से वात वलयों से घिरा हुआ है। वात माने होता है हवा, और वलय शब्द का अर्थ होता है घेरा। वात का मतलब हवा और वलय माने घेरा। तीन वात वलय हैं, पहला, दूसरा और एक इसी तरह से तीसरा। और संपूर्ण लोक को चारों तरफ से घेरे हुए ये तीन हवा के घेरे हैं। इसके बाहर क्या है लोक के बाहर? कि लोक के बाहर है अलोकाकाश, अलोक। अलोक किसे कहते हैं? कि जहां छह द्रव्य नहीं है, सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाए, उसका नाम है अलोक। अनंत अलोक है इस लोक के चारों तरफ, दसों दिशाओं में सब तरफ अलोक है, कोई अंत नहीं है इस लोक अलोक का। और अनंत अलोकाकाश के बीच में, सेंटर में, ये तीन लोक हैं जिनको हवा ने घेर रखा है। तीनों वात वलयों के नाम हैं। सबसे पहला वात वलय है घनोदधि। घनोदधि वात वलय, ठीक है। दूसरा है घन वात वलय, और तीसरा है तनु वात वलय। घन, उदधि, वात और वलय। घनी हवा, जल मिश्रित, उदधि मानी जल, पानी। तो पानी से मिश्रित घनी हवा का घेरा है सबसे पहले, जिसने लोक को टिका रखा है। इसके पश्चात दूसरा है घनवात वलय, घनी हवा, माने हवा थोड़ी सी और पतली हुई, और फिर तनुवात वलय, हवा और पतली हो गई, माने ये संपूर्ण लोक है, ये पूरा का पूरा लोक हवा में टिका है। लोग इस तरह की बातें भी करते हैं, लोग ये कहते हैं कि साहब इन जैन दर्शन की इन बातों का, कम से कम इन बातों का कोई आधार नहीं है, सारी बातें हवा में ही है। हवा में मतलब समझ गए ना आप, निराधार, बकवास, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। हम कह रहे हैं हवा में तो है, ये सच्चाई है बिल्कुल कि ये हवा के आधार से है, हवा के आधार से है, हवा में इतनी ताकत होती है कि वो इसको टिकाए रख सके। इस तीन लोक को जिस हवा ने टिकाया हुआ है, उस हवा में इतनी ताकत है। आपको क्या लगता है, कोई चीज हवा में टिक सकती है और तीनों लोक टिका हुआ है हवा में? हाँ, हवा की जोर से चलता है लेकिन टिकाए रखने की बात है। चारों तरफ हवा के आधार पर है, कोई दिक्कत नहीं है। हवा में कोई चीज टिके या न टिके, हम उछाल करके देखें, लेकिन ये सब हवा के आधार से रह सकता है। और मैं तो इस संदर्भ में बहुत उदाहरण देता हूँ, छोटे छोटे से उदाहरण, हवा के प्रेशर को समझने के लिए। हम सब मानते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन इस लोक में है क्या, इस तीन लोक में क्या क्या है, इस तीन लोक की रचना किस प्रकार की है। आपने इसके सेंटर में दो लाइनें देखी होगी, देखिए इस तरह की लाइनें, ये त्रस नाड़ी है, लेकिन ये यहां नहीं है, यहां नहीं है जहां आपने देखी है। तो फिर कहां पर है ये त्रस नाड़ी? ये त्रस नाड़ी पीछे की साइड है, इसको तो मिटा दो ना। ये त्रस नाड़ी इस लोक के बिल्कुल पीछे है, एक्चुअल में लोक का फ्रंट फेसिंग है। आप यदि इसके बैक में जाएंगे तो इस तरह से ये पीछे तक भी फैला हुआ है, सात राजू पीछे तक ये फैला हुआ है। तो तीन राजू पीछे जाएं, तीन राजू पीछे से आगे आएं, एक राजू लंबा और एक राजू चौड़ा, इस तरह से यहां पर इस तरफ नाड़ी है पीछे की तरफ। देख पा रहे हैं आप किधर होगी ये? थोड़ा सा चित्र को अपन तिरछा करें तो इस बैक साइड में हमारे को एक तरफ नाड़ी दिखाई देगी, फ्रंट में देखते हैं तो यहां दिखती है, लेकिन एग्जैक्टली ये पीछे जा करके है, पीछे की तरफ है त्रसनाड़ी। इस लोक की आकृति में क्या क्या है, कितना बड़ा है ये? नीचे की तरफ से देखते हैं तो सात राजू फैला हुआ है। आप सोच रहे होंगे अभी ये राजू क्या चीज है ना? राजू क्या है? ये वो व्यक्ति नहीं है राजू जो हमारे यहाँ पेपर डालने आता है कि दूध देने आता है। यहाँ तो नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो पेपर डाल के जाता ही होगा ना। हाँ, तो वो राजू नहीं है ये। तो ये राजू क्या चीज है? एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं। एक राजू बराबर, राजू के लिए रज्जू शब्द का प्रयोग भी मिलता है शास्त्रों में, रज्जू कहें या राजू कहें एक ही बात है, असंख्य योजन। तो योजन नया शब्द आ गया फिर हमारे सामने, योजन क्या चीज है? तो एक योजन बराबर होता है 2000 कोस, 2000 कोस का एक योजन होता है, और एक कोस में 4 मील होते हैं। तो इस तरह से एक कोस में 2 मील होते हैं, एक कोस में 2 मील होंगे, तो 4000 कोस का लगभग ये योजन हो गया, ठीक है ना? और इसी को ये हमने प्रमाण योजन की अपेक्षा से बात कही है, 4000 कोस का योजन माने 6000 किलोमीटर लगभग योजन की नाप आएगी। और इसी बात को श्वेतांबर संप्रदाय के साहित्य में भी देखते हैं तो वहां प्रमाण योजन जो है वो 400 धनुष का कहा है, या 400 गुना ज्यादा बड़ा कहा है, उस आधार पर ये कैलकुलेशन 4000 कोस की जगह 3200 कोस आती है। कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, असंख्यात योजन है ना, असंख्यात योजनों का राजू होता है, ठीक है? सात राजू की नीचे से चौड़ाई है इसकी, हाइट कितनी है? हाइट है इसकी 14 राजू, 14 राज लोग बोलते, सुना होगा आपने कई बार, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, राज्यों की इसकी हाइट है। सेंटर में जो ये दिखाई दे रहा है यहां पर है एक राजू, फिर बीच में चारों तरफ से इस तरह से बढ़ते हुए यहां रह गया है, इसका विस्तार हो गया है 5 राजू, और फिर घटते हुए ऊपर ऊर्ध्वलोक में हो गया है एक राजू। अलग अलग हो गए, 4 जगह हो गए, 7 राजू, 1 राजू, 5 राजू और 1 राजू। हाँ, बाहर से, बाहर की हवा से। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा हो तो आप बीच में पूछे। और ऊपर रह गया एक राजू विस्तार। बैक साइड में कितना है ये पूरा? 7 राजू, 7 राजू का विस्तार है पीछे की तरफ। और हाइट कितनी है? 14 राजू। अब इसका घनफल निकाल सकते हैं अपन, कितना होगा? बहुत ईजी है। घनफल कैसे निकलता है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों को यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो घनफल निकल जाएगा। लेकिन कैसे निकालेंगे इसका? देखिए, हाइट तो अपने ख्याल में आ रही है, हाइट तो पता है अपने को 14 राजू है, ठीक है ना। बैक भी अपने को पता है 7 राजू है सभी जगह से। ये जो चौड़ाई दिख रही है ये 4 जगह पर अलग अलग है, तो बहुत सिंपल है, 4 जगह पर अलग अलग है तो 4 होगा, एवरेज निकाल लो। वेरी सिंपल, 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14 डिवाइडेड बाय 4 3.5 मल्टीप्लाई बाय 14 और मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आता है 343 घन राजू। मैं इसलिए बतला रहा हूं कि इसके माध्यम से मैं कुछ निष्कर्ष निकालना चाह रहा हूं, इसलिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखें अभी कि संपूर्ण लोक का जो घनफल है वो कितना है? 343 घन राजू। घन राजू 343 और 1 राजू असंख्यात योजनों का। अभी इसमें जो त्रस जीवों के रहने का स्थान है, जहां त्रस जीव रहते हैं, त्रस जीव बोले तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, देव, नारकी, मनुष्य और सारे तिर्यंच, एक इंद्रियों को छोड़कर, एक इंद्रियों को छोड़कर के बाकी जितने जीव हैं वे सभी जीव कहाँ रहते हैं कि इस त्रस नाड़ी में। आप देख रहे हैं त्रस नाड़ी कितनी बड़ी है, ये 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी, और 14 राजू तो लंबी है, लेकिन 14 राजू में से ऐसा कहा है शास्त्रों में कि नीचे का कुछ हिस्सा जो नित्य निबोध के अंतर्गत चला जाता है वहां भी एक इंद्रिय ही है, तो 13 राजू से कुछ कम कही है। नीचे 7 नरकों के नीचे वहां नित्य निबोध है, निबोधिया जीव रहते हैं, एक इंद्रिय रहते हैं, वहां भी त्रस नहीं है, वो 1 राजू का पोर्शन है नीचे। तो 13 राजू का ऐसा हो गया। अब 13 राजू हाइट वाली, 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी, तो त्रस जीवों के रहने का स्थान कितना घनफल हुआ? 13 घनफल। कितना हो गया? सिर्फ और सिर्फ 13 घनफल। आप कल्पना कर सकते हैं, एक इंद्रिय जीवों के रहने का स्थान और त्रस जीवों के रहने का स्थान, 343 घन राजू का एरिया, उसमें से 13 घन राजू में रहते हैं त्रस, और बाकी के 330 घन राजू कौन से जीवों के लिए है? एक इंद्रिय। और 330 घन राजू के एरिया में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिस जगह पर एक इंद्रिय जीव ना हो। आप, मैंने कल परसों जो अपन ने मनुष्य भाव की दुर्लभता वाला जो स्पेशल प्रोविजन रखा था उसमें अपन ने चर्चा की थी कि एक इंद्रिय जीवों को एक तरफ रखो और सारे त्रस एक तरफ रखो, और एक इंद्रियों में से अनंत उठा करके सामने रखो और त्रस में से एक, अनंत एक इंद्रिय और त्रस में से एक, अनंत एक इंद्रिय लेफ्ट से और राइट से त्रस में से एक, और थोड़े समय में देखते हैं त्रस खत्म और ये अनंत के अनंत। माने त्रस पर्याय की तुलना में एक इंद्रिय पर्याय का प्राप्त करना मतलब जो है वो बहुत सरल है, या एक इंद्रिय से त्रस पर्याय का प्राप्त करना अनंत गुना दुर्लभ है। अनंत में एकाध जीव ऐसा होता है जिस जीव को चांस मिलता है त्रस पर्याय की प्राप्ति का। आप सोच नहीं सकते, कदाचित वो मिल भी गया, समझ लीजिए आप त्रस भी बन गया, तो 3 इंद्रिय हुआ, चींटी हुआ हमारे पैर के नीचे आ गया और दोबारा मर के एक इंद्रिय, चलो वापस अनंत काल, पता नहीं कब निकलेगा दोबारा त्रस में। चांस नहीं है ऊपर आने का, कदाचित और आगे बढ़ गया, चार इंद्रिय हो गया, मच्छर हो गया, और हमने लगाई गुड नाइट और हो गए वो स्वाहा, और मर करके एक इंद्रिय में चले गए, तो फिर काल अनंत 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 काल है, पर्याय की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य पर्याय तो महान दुर्लभता से प्राप्त होती है, चर्चा करेंगे अपन और थोड़ी इसके बारे में। मैंने जो ये 330 धनराजु जो कहा है, ये 330 तो कहा प्योरली एक इंद्रिय के लिए, बट एक इंद्रिय जीवों के रहने का स्थान तो पूरा 343 है, क्योंकि यहां तो सर्वत्र है तरफ नाड़ी में, तो नहीं ख्याल में आई बात। हम लोग यहां बैठे हैं, यहां भी तो निगोदिया जीव, एक इंद्रिय जीव, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव, ये सर्वत्र टसाटस भरे हुए हैं संपूर्ण लोक में, सूक्ष्म और बादर के रूप में सब जगह पर भरे हुए हैं संपूर्ण लोक में। माने 343 गणराज्यों में एक इंद्रिय, तो 3 जीवों के रहने का स्थान मात्र लिमिटेड, बहुत छोटा सा, और उसमें भी कितने कितने नारकीय हैं, 7 नरक का पोर्शन पूरा का पूरा, 7 राजु का नीचे वो चला गया पूरा किसके लिए, 13 गणराज्यों के क्षेत्र में से 7 राजु का क्षेत्र नारकियों के लिए, ऊपर के 7 राजु का क्षेत्र देवों के लिए, तो फिर मध्य लोक में क्या बचा। मध्य लोक की हाइट बहुत कम है, जो ऊपर के 7 राज्यों में से पहला राज्य जहां शुरू होता है ना, उसमें से थोड़ा सा कम, 1,40,000 योजन, तो मेरु पर्वत की हाइट बराबर इतना सा है। आते कहां से हैं, वहां अनादि काल से देवगति से भी आते हैं, सब जगह से जाते हैं। अपने को देवगति की, अभी अपन जब देवगति की चर्चा करेंगे तो मैं बतलाऊंगा देवगति के क्या हाल है। अब एक्चुअल में क्या होता है, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, दूर से देखो तो बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, अब पास में जाओ तो पता लगता है कि हकीकत क्या है, ठीक है ना। इंडिया वालों को बंबई बहुत अच्छा लगता है, मुंबई वालों को अमेरिका बहुत अच्छा लगता है, तो अमेरिका वाले कहते हैं यार हालत खराब है यहाँ तो जो रहता है वो जानता है, लोग कहते हैं हमारी हम ही समझते हैं भाई, हमारी हम ही जानते हैं। तो देवों की क्या स्थिति है ये तो अपन यहाँ बैठे बैठे नहीं देख पाएंगे, अपन थोड़ी देर में देवलोक में चलेंगे, वहीं चल के देखेंगे और क्या, लेके चलेंगे आपको। अपन दुनिया घूमने चल रहे हैं, वर्ल्ड टूर पे निकले हैं अपन तो दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या है वैसे ही दिखाऊंगा जैसे टूरिस्ट वाले दिखाते हैं। इतना फास्ट चलेंगे आपको कहीं मौका नहीं देंगे रुकने का, कभी आप टूर लीजिए तो वो कहेंगे इतने बजे बस फटाफट फास्ट चलो आगे बढ़ो, यहाँ 15 मिनट का टाइम है आपके पास में, उतरो जो जो आपको फोटो खींचना है खींचो फिर आगे बढ़ो बस। तो मैं यहाँ से बढ़ता रहूंगा, आपको जिस चीज की फोटो खींचनी है आप अपनी कॉपी में खींच ले हैं, फटाफट आगे बढ़ते चले अपन। त्रसनाड़ी की बात हुई, लोक की चर्चा हुई, जितनी रचनाएं दिखाई देती है मतलब ऊर्ध्व लोक मध्य लोक अधो लोक स्वर्ग नरक आदि, ये सारी रचनाएं सिर्फ त्रसनाड़ी में है, त्रसनाड़ी के बाहर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपन सारी बातों से विराम लेकर के और निपटते हुए आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ त्रस नाड़ी की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा अपन एनलार्ज करते हैं इसको, जूम करें और बीच में आ गए हम त्रस नाड़ी पर। अब ये जो बीच में दिख रही है ना, इसको अपन त्रस नाड़ी मान लेते हैं, यहाँ हाँ पीछे वाली तरफ ना, वो दो नहीं है त्रसनाड़ी, त्रसनाड़ी तो एक ही है, फ्रंट से देखने पर इधर दिखती है तो पीछे ही, ठीक है ना। त्रसनाड़ी एक ही है पूरे लोक में, दो नहीं है, आकृति तो यही होगी ना। और यदि अपन थोड़ा सा देखेंगे इसको तो ऐसी और हो जाएगी, थोड़ी सी बैक से इस तरह की हो जाएगी, क्यों चौकोर होगी, स्क्वायर होगी, और 13 राजू की वो होगी। अब देखें इसमें क्या है, मध्य में है मध्य लोक, सेंटर में, नीचे है अधो लोक जहां है 7 नरक पृथ्वियां, और ऊपर है ऊर्ध्व लोक, 3 लोक है ऊर्ध्व मध्य और अधो। अधो का मतलब होता है नीचे, मध्य माने बीच में, और ऊर्ध्व माने ऊपर। बहुत सिंपल है इन तीनों के नाम, तीनों लोक के, इनमें से तीनों लोकों के विभाजन का आधार है सुमेरु पर्वत। मेरु पर्वत, मेरु पर्वत पांच हैं, लेकिन पांच मेरु पर्वतों में सबसे मध्य में एक पर्वत है जो बड़ा है, जिसकी हाइट ज्यादा है, 1,40,000 योजन का है, वो कहलाता है सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु पर्वत। ठीक है, 1,40,000 योजन जम्बू द्वीप में है। अभी अपन जब जब मध्य लोक की भी बात लेंगे ना, थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ा चलेंगे अपन, पांच पांच जितना हो सकता है। ठीक है, मतलब वो टूरिस्ट वाले कहते हैं ना, आप कितने दिन का पैकेज लेना चाहते हैं? तो अपना ये जो पैकेज है 2.5 घंटे का पैकेज है, तो अभी 2.5 घंटे के पैकेज में जितना होगा उतना दिखा देंगे। 3 घंटे का कर लेते हैं उसको, कोई खास बात नहीं है। देखिए आप, मेरू पर्वत के जस्ट नीचे, बिल्कुल इसके तल से, जहां इसका बॉटम है सुमेरू पर्वत का, इसका नाम क्या है? वास्तव में मेरू पर्वत पांच है, जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत का नाम है, मूल नाम है सुदर्शन मेरू। सुदर्शन मेरू, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? सु मेरू। ठीक, शॉर्ट में कहेंगे तो सुदर्शन मेरू कहेंगे। ठीक है, सुमेरु हो गया। इसके ऊपर से चालू होता है ऊर्ध्व लोक, माने सुमेरु पर्वत के, सुदर्शन मेरु पर्वत के सर से, चोटी से, जहां मेरु पर्वत का शिखर है, वहां से एक आड़े बाल का अंतर होवे, एक बाल का अंतर, वहां से ऊर्ध्व लोक शुरू हो जाता है, ऊपर स्वर्ग शुरू हो जाते हैं वहां से। ठीक है, और इतनी जो हाइट है, इस हाइट का नाम है मध्य लोक। एक राजू भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक राजू भाई एक राजू का तो है, लेकिन हाइट कम होने से जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत कम हो जाता है। एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा, और 1,40,000 हाइट को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, राजू में काउंटिंग नहीं हो सकती उसकी। ठीक है ना, अभी इसमें एक और मत है दूसरा, हाइट के संदर्भ में। मैं जब लाडनू पढ़ता था जैन विश्व भारती में, तो हमारे को ऐसा कोई पढ़ा रहे थे, हमारा साहब ये विषय लिया, मैं बहुत तर्क करता था वहां, सब बहुत इतना बहस करता था, जब पढ़ाते थे सामने जी वगैरह पढ़ाते थे, हमारे को क्लास चलती थी, खूब तर्क करता था, खूब उल्टे सीधे प्रश्न, उल्टे सीधे का मतलब शास्त्र के आधार से पढ़ रखे थे पहले। तो इन लोग का जब प्रसंग चला तो उन्होंने हाइट वगैरह की चर्चा की, ऊर्ध्व लोक मध्य लोक वगैरह के संदर्भ में, तो वहां कुछ दूसरा प्रतिपादन था, यहाँ कुछ दूसरा है। तो बहुत सारे शास्त्रार्थ हुए, आचार्य महाप्रज्ञ जी से भी काफी चर्चाएं हुई, क्षमा शरण जी से भी काफी चर्चाएं हुई, लाडनू ने काफी लाइब्रेरी में जाकर के रिसर्च की, निकाले प्रमाण, निकाले सब देखे, और फिर लास्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हुए, कहते हैं ऊर्ध्व लोक मध्य लोक और अधोलोक का जो विभाजन है, मतलब जो मध्य लोक की हाइट है, वो मध्य लोक की हाइट 790 योजन बताते हैं। तो मैं बतलाता हूँ तर्क से क्या बात है, किस वजह से। ये जो सुमेरु पर्वत है, इस सुमेरु पर्वत को चारों तरफ राउंड लगाते हैं सूर्य चंद्रमा, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। जैन दर्शन के हिसाब से पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्र उसके चारों तरफ घूमते हैं, ऐसा है। तो सूर्य चंद्र जो है, ये ज्योतिष देवों के विमान हैं। चार प्रकार के देव होते हैं ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। तो इनमें जो ज्योतिष नाम के देव हैं, वे देव सूर्य में रहते हैं, चंद्रमा में रहते हैं, ग्रह नक्षत्र और तारों में रहते हैं, वो सब देव, देवगति के जीव हैं, ये देवों के विमान हैं। पृथ्वी का एक है ये सूर्य चंद्रमा वगैरह, पृथ्वी का एक जीव है विमान, एकेंद्रीय जीव, और विमान में रहने वाले देव हैं, और इन विमानों को चारों तरफ से खींचने वाले देव हैं। 16,16,000 देव खींचते हैं सूर्य चंद्रमा के विमान को, और किस तरह से दिन रात आदि होते हैं, वो तो बहुत विस्तृत प्रकरण है, कभी चर्चा होगी तो अपन उस चीज को देखेंगे। हाँ, तो देवगति के दुख देखेंगे ना, अभी अपन चर्चा करेंगे हम, देवगति के हाल क्या है तो पता लगेगा अपने को। वहां भी मजदूर होते हैं, वहां भी नौकर होते हैं, सर्वेंट होते हैं, ऐसे थोड़ी ना सब राजा ही राजा होते हैं। ओबामा तो एक ही है ना अमेरिका में, तो देवगति के जीव चर्चा करते हो, मान लो कि नार की चर्चा करते हो, अरे हाँ मनुष्य गति में तो बहुत ठाट है, ओबामा जैसे लोग हैं वहां, पता है आपको? अरे तो लेकिन एक ही तो है, बाकी तो प्रजा ही है। तो देवगति में भी इंद्र तो एक ही होगा, बाकी तो प्रजा ही है। अपन उसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, हो सकता है नेक्स्ट सेशन में करें अपन, मतलब अभी तो अपन बात कर रहे हैं मध्य लोक कितना है। तो ये जो सूर्य चंद्र वगैरह हैं, ये हमारे धरातल से पृथ्वी से 790 योजन ऊपर से शुरू होते हैं, और 790 योजन ऊपर से जाकर 900 योजन ऊपर तक का क्षेत्र है इनका, ज्योतिष देवों का 110 योजन का एरिया है। तो 790 योजन से, क्योंकि सबसे 790 योजन पर है तारे, तो यहां से तारे शुरू हो गए ना, माने देव लोग शुरू हो गए, तो ऐसा मानते हैं कि यहां से हम ऊर्ध्व लोग शुरू हो गया। ठीक है, तो मध्य लोक की हाइट 790 योजन तक रह रही। और हम ये कहते हैं, दिगंबर मत में ऐसा कहा जाता है कि समझिए आप, क्योंकि मेरु पर्वत के शिखर पर बाल तीर्थंकर को ले जाते हैं जन्माभिषेक के लिए, तो उसका जो संबंध है मेरु पर्वत का, यद्यपि देव लोग ले जाते हैं लेकिन वो मध्य लोक की मर्यादा के अंतर्गत आता है। तो दोनों संप्रदायों के अंदर इतनी बात ऐसी ऐसी कही गई है, कोई प्रयोजन भूत बात नहीं है, अप्रयोजन भूत बातों के अंदर कोई विवाद से कुछ मतलब भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, करुणाम युग की बातें हैं, यथार्थता केवली जाने। और हमने दोनों के लिए तर्क तो बतला ही दिए, किस वजह से वो 790 कहते हैं और किस हिसाब से 1,40,000 योजन की मध्य लोक की हाइट है। ये सुमेरु पर्वत तीनों लोकों के विभाजन का आधार हो गया। अब आप चाहें तो पहले नरक में चलें और आप चाहें तो स्वर्ग में चलें, किधर चलना है बताओ, गाड़ी किधर घुमाएं? मुझे लगता है कि देवगति के बाद में नरक की चर्चा थोड़ी सी भारी पड़ेगी, तो पहले नरक से निपट लेते हैं, पहले दुख के घड़ियां निपट जाए, तो फिर आराम से सुख से रहेंगे देवगति में। कितना है उसकी बात तो बाद में करेंगे लेकिन अभी अपन नरक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो अधो लोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं, ध्यान दीजिएगा, 7 नरक पृथ्वियां हैं। इस पूरे 3 लोक में, पूरे त्रिनाड़ी में 8 पृथ्वियां हैं। टोटल पृथ्वियों की संख्या कितनी है? 8। 8 पृथ्वियों में से 7 पृथ्वियां हैं अधो लोक में। रत्न प्रवाह कल हमने बतलाया था, ध्यान है आप लोगों को, भाई रत्न प्रवाह नाम सुनते ही ऐसे लगता है जैसे रत्नों जैसी बात होगी, लेकिन भैया ये रत्नों जैसी बात नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी, सुनिए, आप नहीं थे कल, माने कोई महात्मा जी ने किसी महिला से पूछ लिया, कह दिया ऐसी बात कि महात्मा जी ने कहा उस महिला से कि अरे क्या करती हो ये, इतना गलत काम, अभी तो प्रवचन सुन के आई हो, आलू के दुकान पे खड़ी हो, आलू खरीद रही हो ठेले पर से, क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारी करती हो? महिला बहुत सरल स्वभावी थी, सज्जन थी, बहुत विनम्र शब्दों में महात्मा जी से कह दिया, महात्मा जी कैसी बातें करते हैं, रत्न प्रभा जैसी जगह पर तो आप जैसे महात्मा ही जा सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम जैसे पापी थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन भाई वास्तव में रत्न प्रभा नरक का नाम है, ये पहली नरक पृथ्वी है रत्न प्रभा। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा, हो जाता है ऐसा। पहली का नाम है रत्न प्रभा, दूसरी का नाम है शर्करा प्रभा, सातों के नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 नाम है इनके। ये सब जो नाम है ये सारे के सारे नाम गुण नाम कहलाते हैं, माने वहां की कैसी रोशनी है, नरकों में वातावरण किस प्रकार का है। पहले नरक की जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का वातावरण रत्नों की प्रभा जैसा है, और इतनी रोशनी है, तीव्र रोशनी है, तेज रोशनी है वहां, इसलिए उसका नाम है रत्न प्रभा। दूसरे में लाइट बिल्कुल डिम हो गई, प्रकाश बहुत कम हो गया। शर्करा, शक्कर खांड, क्या कहते हैं आप लोग, शक्कर, शक्कर जैसा। फिर तीसरे में बालू मिट्टी जैसा, चौथे में पंख माने कीचड़ जैसा, पांचवे में धूम मतलब धुआं की तरह का प्रकाश है, छठवें नरक में तो अंधकार ही है, और सातवें नरक में इतना घोर अंधकार है, इतना घोर अंधकार है कि यदि वे सप्तम नरक के नारकी हाथ ऐसे आगे करें तो अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे। उसका नाम है महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक है। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 3रे अध्याय के पहले सूत्र में लिखा है, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम है, प्रभा भूमियो धनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दोज है, ऐसा सूत्र दिया है। सात पृथ्वियां हैं और सब अधो अध है, नीचे नीचे है। हाँ, यदि तत्वार सूत्र, हाँ है, जिसको चाहिए हो तत्वार सूत्र, तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय के अंदर ये चर्चा बहुत विस्तार से की है तत्वार सूत्र में, वहां स्वामी आचार्य देव ने, ठीक है, बहुत विस्तार से वर्णन है उनकी टीकाओं में, बहुत विस्तार से वर्णन है, मूल तत्वार सूत्र में कम है, फिर उसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत बहुत चर्चाएं मिलेगी। लोग कहते हैं कि साहब आप ये जो बातें कर रहे हो, इन बातों का आधार क्या है, इन बातों की सच्चाई का क्या आधार है, तो इन बातों की सच्चाई का आधार ये है कि ये बातें महाव्रतियों के माध्यम से कही गई है, जो सत्य महाव्रत के धनी है, माने सूक्ष्म से सूक्ष्म झूठ भी जिनके जीवन में नहीं है, तो ये इसकी सच्चाई का आधार है। और जितनी जगह पर देखते हैं, सब जगह पर हमारे को कोई फर्क नहीं मिलता है, इससे सिद्ध होता है कि ये सारी बातें सच्ची है, काल्पनिक नहीं है। जब जब लोग मेरे को कहते हैं ना कि ये काल्पनिक बातें हैं, तो आप क्या कर रहे हो आप, ये सब कल्पना की बातें हैं, तो होता है कि इतनी दुनिया और इतना बड़ा और ये सब और कौन से स्वर्ग और कौन से नरक, लोग इस तरह की बातें करते हैं, किसने देखे नरक का, देख करके आए हो और भूल गए हो तो दोबारा चले जाना। तो किसने देखे नरक, सर्वज्ञता के ऊपर आक्षेप है सीधा सीधा। आप क्या जो चीज देखी है उस पर भरोसा करते हो, जो चीज नहीं देखी है उस पर भरोसा नहीं करते। अमेरिका की खोज नहीं हुई थी उसके पहले अमेरिका था या नहीं था, किसने की थी खोज, कोलंबस ने, हिंदुस्तान की खोज में निकला था अमेरिका पहुंच गया था कोलंबस, मतलब जब तक खोज नहीं हुई तब तक है या नहीं है। तो यदि वैज्ञानिक लोग आज इस दुनिया को नहीं खोज पाए हैं, कितनी बड़ी दुनिया है उसको नहीं पकड़ पाए, पकड़ नहीं सकते क्योंकि दुनिया है इतनी बड़ी, वो उनके पकड़ का विषय नहीं है, वो उनका क्षेत्र नहीं है, इससे उसकी सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको मानना ही पड़ेगा, हजारों बातें ऐसी है जिन बातों को आपने श्रद्धा से मान रखा है, और यदि आप श्रद्धा ही नहीं रखेंगे तो फिर आप नहीं समझ सकते आपको किस किस को उड़ाना पड़ेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप यदि इन बातों को हटाने की यदि चर्चा करेंगे ना कि हम नहीं मानते, तो फिर स्वर्ग गायब हो जाएंगे, नरक गायब हो जाएंगे, दिखाओ तो मानेंगे, मध्य लोक में जो नंदीश्वर आदि द्वीपों की चर्चा की है सब खत्म हो जाएंगे, विद्यमान 20 तीर्थंकरों की चर्चा खत्म हो जाएगी, और तो और छोड़ो, लोग ये कहेंगे कि 24 तीर्थंकर हुए थे, हमें इस बात पे भरोसा नहीं है। आप सिद्ध कर सकते हैं ऋषभ देव हुए थे, महावीर स्वामी को तो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं 2500 वर्ष पहले, कूड़ा कूड़ी सागर पहले हुए ऋषभ देव को कहां से सिद्ध करेंगे हम, श्रद्धा का विषय है ना, सीधी सी बात है, 24 तीर्थंकर हुए थे ये तो आप मानते हैं कि नहीं, पूछते हैं हम, सब खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूं आप 24 तीर्थंकरों की छोड़िए, आप नमोकार मंत्र नहीं बोल सकते, बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे नमो अरियंताणाम, कौन है अरियंत ये बताओ हमारे को, हुई अरियंत कहाँ है भाऊजी, सिद्ध कहाँ है दिखाओ हमारे को, कि बेटा सिद्ध तो अशरीरी होते हैं, लोक के अंत में विराजमान होते हैं, सिद्धालय में होते हैं, कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, साइंस नहीं मानती। प्रणमोकार मंत्र में से दो पद हटाने पड़ेंगे स्टार्टिंग के, बोलो स्वीकार है आपको ये चीज, नहीं नहीं साहब प्रणमोकार मंत्र तो हम, प्रणमोकार मंत्र पर तो हमारे को सबको श्रद्धा है, बस ऐसी ही श्रद्धा इस पर करनी पड़ेगी। नमोकार मंत्र को मानते हैं, अरण सिद्धों को मानते हैं, आप आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकते, साइंस तो आत्मा को नहीं मानती है, आत्मा सामने छोड़े बैठे हैं यहां पर, आज तक साइंस इस बात को प्रूव नहीं कर सकी कि आखिर ये जीव मरता क्यों है, इस बात का जवाब नहीं है साइंस के पास में, और मर करके ये जीव जाता कहां है, वैज्ञानिक पकड़ नहीं सकते इस चीज को। हम साइंस साइंस के गीत गाते हैं ना, सारी दुनिया हुआ साइंस साइंस दिखता है, नहीं नहीं साइंस कहेगी तो साइंस नहीं मानती, तो आप साइंटिफिकली प्रूफ कर दो, आप क्या प्रूफ कर दें, साइंस का ज्ञान कितना सा है, जैन दर्शन के केवलियों के केवल ज्ञान के आगे साइंस तो तुच्छ ज्ञान है, दूर दूर तक बराबरी नहीं कर सकते हम, कोई मेल नहीं है साइंस का और जैन दर्शन का। साइंस को स्वीकार करना हो तो जैन दर्शन की बात माने, जैन दर्शन साइंस का हवाला नहीं देता।
बोलो,
अरे अरे असंख्यात जीव हैं, साइंटिस्ट आज कह रहे हैं कि उसके अंदर पानी की एक बूंद के अंदर 36,450 जीव है, गिन लिए वैज्ञानिकों ने। वनस्पति में जीव है यह सिद्ध किया अभी, बोलो, जगदीश चंद्र बसु ने अवार्ड मिला उनको, नोबेल पुरस्कार मिला उनको, क्या सिद्ध करने के लिए कि वनस्पति में जीव है। किसी मुनिराज को मिला है ऐसा अवार्ड जिन्होंने शास्त्रों में लिखा कि वनस्पति में जीव है? वो रिसर्च कैसी होगी? मैं कई बार कहता हूं ये वैज्ञानिक इसलिए बराबरी नहीं कर सकते हैं, हजारों मशीनें एक्सपेरिमेंट के इनके पास में साधन सब चीजें, उसके बावजूद ये नहीं देख सकते हैं। और संतों ने क्या कमाल किया है, कुछ नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, कोई बाहर में उपकरण नहीं थे, साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, और जंगल की किसी गुफा में बैठ करके लिख दिया कि 14 राजू होते हैं। बोलो, ये अंदर का दिव्य ज्ञान है ही, माने अंदर उनके ज्ञान से ये बातें ख्याल में आती है। वहां बैठे बैठे उनको 3 लोक दिखता था, लोक की रचना दिखती थी, 7 नरक दिखते थे, और तर्क से तो सिद्धि होती है नरक की। नरक वो स्थान है जिस स्थान पर ये जाने के बाद में शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लेकिन फिर जुड़ जाता है, मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पाता है, दुख इतने अपार हैं, संयोगजन्य नहीं समझ लेना आप, देह के प्रति आसक्ति के कारण। नरक दुख का कारण नहीं है लेकिन नरक शरीर को प्राप्त करके शरीर को अपना मानता है, इसलिए नरक के वातावरण में दुखी होता है। वातावरण खराब जैसा दिखता है, अपन अपने यहाँ के वातावरण, अपनी मेंटेलिटी की जन सामान्य की अपेक्षा से बात करें, वातावरण इतना खराब है, यदि वहां के नरक की भूमि की मिट्टी का एक कण निकल करके यदि यहाँ आ जाए फ्लोरिडा में, तो एक व्यक्ति जिंदा नहीं बचे। अब आप समझ सकते हैं उसकी दुर्गंध से इतने लोग मारे जाएं, ऐसी दुर्गंध है वहां नरक के नारकियों के शरीर की, वहां की मिट्टी की। खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं मिलता, पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलता, तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। इतनी इतनी सिंधु नीर से प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए, 3 लोक को नाच जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। ये सारे के सारे दुख सागरों तक इतने बर्दाश्त किए। हम आपसे पूछते हैं, लोगों से तर्क करते हैं, हम पूछते हैं, हमें एक बात बतलाओ, किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की हो, कानून उसको क्या सजा देगी? फांसी, फांसी मिलेगी उसको। और किसी ने 2 लोगों को मारा हो तो उसको क्या सजा मिलेगी? क्या बात कर रहे हो, उसने डबल अपराध किया है तो भी वही सजा। और किसी व्यक्ति ने 50-100 लोगों को मारा हो, उनकी हत्या की हो, तो क्या है उसका आपके पास में जवाब? सिर्फ फांसी। ये क्या न्याय है? ये एक आदमी को मारे तो भी फांसी और 100 को मारे तो भी फांसी, ये कोई न्याय है? इनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं। एक आदमी को एक बार मारने के बाद में दोबारा कैसे मृत्युदंड देंगे हम, दोबारा कैसे सजा दी जा सकती है? तो नरक ऐसा स्थान है कि जहां मर करके भी नहीं मरेगा, कट करके भी नहीं मरेगा, फिर दोबारा जुड़ जाएगा, फिर दोबारा शरीर के टुकड़े टुकड़े, तन पारे की तरह बिखर गया और फिर दोबारा जुड़ गया पारे के समान, ऐसा स्थान है नरक। सातों नरक में इस तरह की व्यवस्था है। आप चाहें तो मैं नरक की वो दिखा सकता हूं पिक्चर आप लोगों को, 1/2 घंटे की पिक्चर है नरक के वातावरण के संदर्भ में, वो आपको साइट पे मिल जाएगी। आप यदि नरक लिख करके यदि वेबसाइट पे तलाशेंगे गूगल पर तो आपको मिल जाएगी, और पूरा नरक का उसके अंदर पूरा वर्णन, वीडियो देखिए आप, क्या है नरक का हाल, कैसा है नरक, कैसा होता है। 7 नरक पृथ्वियां, 7ों नरक पृथ्वियों में जो पहली नरक पृथ्वी है, उस पहली नरक पृथ्वी का नाम जो रत्न प्रभा बतलाया है, इसके 3 हिस्से हैं, 3 विभाजन है इस नरक पृथ्वी के। यहाँ खर, पंक और अबहुल, 3 विभाग कहते हैं, माने नारकी जीव उसमें से सिर्फ 3रे पार्ट में रहते हैं। पहले नरक के 3 हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम नरक के 3 पार्ट। पहले भाग का नाम है खर, दूसरे का नाम है पंक और 3रे का नाम है अबहुल। खर और पंक भाग में नारकी नहीं रहते, पंक भाग में नारकी रहते हैं। तो खर और पंक में नहीं, अबहुल भाग में। तो खर और पंक में कौन रहता है? इसमें रहते हैं देवगति के जीव, नीचे नीचे भी देवगति के जीव रहते हैं, लेकिन नीचे स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग शब्द का प्रयोग ऊर्ध्व लोक के लिए किया जाता है। देवगति के जीव तीनों लोकों में रहते हैं, मध्य लोक में ज्योतिष रहते हैं, व्यंतर रहते हैं, भवनवासी व्यंतर अधोलोक में रहते हैं, और वैमानिक देव ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो खर और पंख में कौन रहता है? खर और पंख में रहते हैं व्यंतर। आठ प्रकार के व्यंतर होते हैं, कल बतलाया था हमने। आठ प्रकार के व्यंतरों में से राक्षस को छोड़कर सात प्रकार के व्यंतर रहते हैं खर भाग में। दस प्रकार के भवनवासी हैं, ये सब तत्वार सूत्र के सूत्र हैं। भवनवासी नो स्वर्णाग विद्युत पर्णागनी वास सरित धजी दीप दिक् कुमार। दस के नाम बतलाए भवनवासियों के, आठ के व्यंतरों के नाम बतलाए हैं। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष मौर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय के सूत्र हैं ये सब। दस प्रकार के भवनवासियों में से असुर कुमार को छोड़कर नौ प्रकार के भवनवासी ये रहते हैं सब खर भाग में। और पंख भाग में रहते हैं राक्षस और असुर कुमार, और अबहुल भाग में रहते हैं नारकी। फिर इन सातों नरक के अंदर नरकों के बिलों की संख्या बतलाई है, उनके पटलों की संख्या बतलाई है। पहले नरक में 30 लाख बिल हैं, तो दूसरे नरक में 25 लाख हैं, तीसरे में 15 लाख हैं, चौथे में 10 लाख हैं, पांचवें में 3 लाख हैं, छठवें में 1 लाख में 5 कम बिल हैं, और सातवें में 5 ही बिल हैं। टोटल सातों नरकों के मिलाकर के 84 लाख बिल कहे गए हैं। नहीं, ऐसे विभाजन नहीं है, सिर्फ पहले में है। हाँ, यहां से असुर कुमार जाति के देव जाते मारते नहीं है, वो मरते तो आपस में ही है, लड़ते भिड़ते हैं वो सब। असुर कुमार जाति के देव जाकर के भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। प्राग चतुर्भ्या असुर कुमार आदि जाति के देव वे वहां जाकर के किलवेश असुर कुमार ऐसे हीन जाति के देव हैं, वहां जाकर के उनको उसी में मजा आता है, कौतूहल में मजा आता है। जिस तरह से यहाँ इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग दिखते हैं ना, जिनको लड़ाई देखने में मजा आता है, वो WWF चलता है, रेसलिंग और ये सब चलते रहते हैं, सब बहुत मजा आता है उसको देखने में, उसको लड़ने में। जानवरों की लड़ाई हो रही हो, लड़ाते हैं इस तरह से, हाथियों की लड़ाई करवाते हैं, भेड़ों की लड़ाई करवाते हैं, जैसे पहले बहुत चलता था, कुश्ती वगैरह होती है, उनको देखते रहते हैं, उसमें बहुत मजा आता है। वो सब ऐसी प्रवृत्तियां उसी रूप प्रवृत्तियां हैं असुर कुमार आदि जाति के देवों की। तो इस तरह से उनके बिल हो गए। सबके अवधि ज्ञान है। उमा स्वामी महाराज पहले अध्याय में कहते हैं तत्वार सूत्र में कि देव नारकाणाम उपादे हैं, और सबके सब नियम से वैक्रियक शरीर वाले जो हैं इनके अवधि ज्ञान होता है। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम ऐसा सूत्र दिया है। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, देवों और नारकियों के नियम से भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। माने वे सबके सब नारकी अवधि ज्ञानी होते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान कितना था? पहले नरक के अंदर 4 कोस की बातों को जानने का, सिर्फ 4 कोस। दूसरे नरक में 3.5 कोस की बात को जानने का, तीसरे नरक में 3 कोस की बातों को जानने का, आधा आधा कोस घटते चले गए। कहीं नहीं क्या जानते हैं, कुछ अवधि ज्ञान काम नहीं करता उनका, नाम मात्र है, और लड़ाने भड़ाने में सहयोगी होता है। जितना जैसा उनका नॉलेज होती है उसके आधार पर लड़ते हैं, बहुत ज्यादा झगड़ते हैं, मारकाट मची रहती है। खाने पीने की परिस्थितियां मैंने आपको बतलाई दी है। ये जो बिल होते हैं, ये सारे के सारे बिल अंधे कुएं के समान होते हैं, अंधेरे कुएं के समान। और ऊपर उपात जन्म होता है, तो जैसे छत्ता होता है ना ऐसा, तो ऊपर छत्ते में जन्म हुआ और वहां से धड़ाम से नीचे गिरते हैं, जमीन पर गिरते ही उछलते हैं वहां से। पान पान तो धनुष तक उछलने की चर्चा ही है, माने वो पृथ्वी को छूते ही ऐसा लगता है मानो करंट लग गया, खतरनाक करंट लगता है। लेकिन क्या करें, रहना तो धरातल पर ही है, आकाश में तो उड़ नहीं सकते, बॉल की तरह उछलते हैं, और फिर वहीं उसी धरातल पर रहना पड़ता है। बिच्छू नहीं होते वहां, नरक में विकलत्रय जीव नहीं होते, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असैनी पंचेंद्रीय जीव नहीं होते। सभी नारकी जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, सभी नारकी जीव। कपड़े नहीं होते, सभी नग्न ही होते हैं, सभी नारकी नपुंसक ही होते हैं, ठीक है ना। और सभी नारकियों का उपात जन्म होता है, ठीक है। माता पिता नहीं होते नारकियों के, परिवार नहीं होता नारकियों के और लड़ाई झगड़े के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता उनका, सर्दी और गर्मी के अपार दुख भोगते। नरक में जाने वाले क्या बात करें आपसे, सब पाप करने वाले जितने दिखाई देते हैं, समझ लीजिए आप मांस भक्षण करने वाले, शराब पीने वाले, परस्त्री सेवन करने वाले, वेश्या सेवन करने वाले, जुआ खेलने वाले, सप्त व्यसनों में पारंगत रहने वाले। और उमा स्वामी आचार्य ने तो नरक आयु के आश्रम के कारण जहाँ बतलाए हैं, तत्वार सूत्र में छठवें सातवें अध्याय में है, वहाँ सूत्र दिया है, आठवें में तो आठवें में आयु कर्म की चर्चा शायद नहीं, कर्म के आश्रम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है, नरक आयु के आश्रम के कारण बतलाते हुए, बहुआरंभ परिग्रहत्व नारकस्य आयुष्य है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जो है उसे नरक आयु के आश्रम का कारण बतलाया। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह तो फिर लोगों को लगता है कि सब जितने पैसे वाले हैं सब नरक में जाएंगे क्या? क्या भाव? बहु आरंभ परिग्रह, तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये नरक जाने का कारण है कि नहीं? नहीं, आरंभ परिग्रह नहीं, चक्रवर्ती सब नरक में थोड़े ना जाते हैं, ऊर्ध्व लोक और मोक्ष भी होता है उनको तो। हाँ, दो चक्रवर्ती नरक में भी गए हैं ये अलग बात है, लेकिन वो परिग्रह की वजह से। असली परिग्रह किसका नाम है? असली परिग्रह है अमृत चंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धियों में कहा, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ में कहा, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा, और उन्होंने कहा मूर्छा तो ममत्व परिणाम है। मूर्छा को परिग्रह कहते हैं, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है, मूर्छा परिग्रह। और मूर्छा किसका नाम है? कि ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। इसका मतलब बाहरी संयोगों के प्रति जो आसक्ति का परिणाम है, जो तन्मयता का परिणाम है, जो संयोगों को परिग्रह के पीछे, लालसा उसके पीछे, और हुए और हुए और जोड़ने जोड़ने का जो परिणाम है, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, आसक्ति घट नहीं रही है, नरक का द्वार है। सब अनर्थकारी जितनी प्रवृत्तियां दिखाई देगी ये सब नरक जाने के कारण दिखाई देते हैं। जाता है तो कितने समय तक रहता होगा नरक में? मिनिमम 10,000, 10,000 वर्ष के लिए रहता है कम से कम। पहले नरक की जो आयु है, पहले नरक के नारकियों की रत्न प्रभा में, ये सब मैंने गुण नाम बतलाए थे आपको, है ना, इनके रूढ़ी नाम अलग है। सातों नरकों के, धम्मा वंशा मेघा, धम्मा वंशा मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी, ये सात इनके रूढ़ी नाम भी है। तो अभी रत्न प्रभा जो है, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकियों की उम्र कितनी है? मिनिमम 10,000 ईयर और मैक्सिमम 1 सागर। दूसरे नरक के नारकियों की आयु 1 सागर एक समय से लेकर के और 3 सागर तक। तीसरे नरक में 3 सागर से लेकर 7 सागर तक। चौथे नरक में 7 सागर से लेकर 10 सागर तक। पांचवें नरक में 10 सागर से 17 सागर तक। छठवें नरक में 17 सागर से लेकर 22 सागर तक। और सातवें नरक में 22 सागर से ऊपर 33 सागर तक। हम लोग मैक्सिमम आयु की तो बात करते हैं, मिनिमम भी है ना, बीच में कितनी भी हो सकती है। हमने एक बार ऐसा बोला कि सातवें नरक में किसी जीव ने मान लीजिए 23 सागर की आयु लेकर के जन्म लिया, तो सभा में से बोले पंडित जी 23 नहीं 33 33। मैं कहे 23 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 24 25 26 27 33 सागर तक हो सकती है। लेकिन ये सागर क्या चीज है? सागर कितना बड़ा होता है? हमने जब त्रस पर्याय के बारे में चर्चा की थी और एकेंद्री जीवों के परिभ्रमण के काल की चर्चा की थी, कल परसों की बात है ना, तो हमने कहा था कि इतने इतने सागर का काल है। असंख्यात कल्प काल कहा हमने पृथ्वी का, यादिक में घूमने का काल। और एक कल्प काल होता है 10 कूड़ा कूड़ी सागर का, 20 कूड़ा कूड़ी सागर का, 10 कूड़ा कूड़ी सागर का अवसर्पणी, 10 कूड़ा कूड़ी सागर का उत्सर्पणी, और अवसर्पणी और उत्सर्पणी मिलकर के पूरा का पूरा कल्प काल। वक्ता हमारे स्तोत्र है ना, 3 जगह पर कल्पांत शब्द का प्रयोग आया है, 3 स्थान पर मानतुंगाचार्य देव ने कल्पांत शब्द का प्रयोग किया है। आप जानते हैं कल्पांत क्या है? हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो वो जो है ना कालचक्र जो मैं आपको बतला रहा था, ये सर्कल है पूरा, कालचक्र है ये अवसर्पणी काल ऐसे चलता है, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा और छठा काल, ठीक है ना। ये थोड़ा साइज जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ये समझ लीजिए आप, ये इस तरह से, ये पहला हो गया, ये दूसरा, फिर तीसरा भी बड़ा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये छह काल है अवसर्पणी। जो अभी पंचम काल चल रहा है, फिर ये काल इस तरह से बढ़ना शुरू होता है यहाँ से, और ये कहलाता है उत्सर्पणी, ये ऐसे घूमता है। फिर उत्सर्पणी पूरा हो जाने के बाद में फिर अवसर्पणी चालू होता है, फिर अवसर्पणी के बाद में फिर उत्सर्पणी चालू होता है। ये काल सर्कल जो है इस तरह से काल क्रम से बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, अवसर्पणी से उत्सर्पणी और उत्सर्पणी से अवसर्पणी। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का कहलाता है अवसर्पणी। कितना बड़ा काल है ये? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी क्या चीज है? हाँ महेंद्र भाई पता है आपको, तो एक बार क्या हुआ, मैं शिखर जी जाकर के उतरा ऊपर से, और नीचे उतरने के बाद में एक सज्जन ने मेरे से कहा कि आप पंडित जी, मैंने कहा हाँ बोलिए क्या बात है। बोले मैं एक बात पूछनी थी, कुछ समझ में नहीं आई। मैंने कहा बोलो क्या है, कि आप लोगों के जितने महाराज हुए हैं, जितने मुनि हुए हैं, ये सब कोड़ी कोड़ी हुए हैं क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोले ऊपर सब लोग अर्घ चढ़ाते समय बोलते थे इतने कोड़ा कोड़ी, इतने कोड़ी मुनि मोक्ष गए, इतने कोड़ी मुनि मोक्ष गए, सब कोड़ी कोड़ी हुए। तो कोड़ी नहीं, कोड़ी मतलब होता है करोड़। कुष्ठ रोग को भी कोड़ कहते हैं ना, लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है। तो कोड़ी शब्द का अर्थ है करोड़। 10 कोड़ा कोड़ी वर्ष नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, इसका अवसर्पणी, और इतना ही बड़ा है उत्सर्पणी, और अवसर्पणी और उत्सर्पणी मिलकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर को कहते हैं कल्पकाल। ये कल्पकाल कहलाता है। जब ये कल्पकाल होता है, चल ही रहा है, कल्प तो हमेशा चलता ही रहेगा, इसमें क्या होता है, ये अंत कल्पकाल का शुरुआत होता है उत्सर्पणी से, और समापन होता है इस कल्पकाल का अवसर्पणी पर। अवसर्पणी काल के अंत में होती है प्रलय। तो ये पूरा कल्पांत शब्द का प्रयोग, मतलब कल्प काल के अंत में जो प्रलय होती है, उसकी चर्चा भक्तामर में 3 स्थानों पर की है। ऐसी प्रलय आती है उस समय, जिस मध्य लोक में हम रहते हैं, इस मध्य लोक के भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र दोनों के आर्य खंडों की उठी हुई पृथ्वी सब पानी पानी हो जाती है। 7 प्रकार की कुवृष्टियां होती है, अग्नि बरसने लगती है, ठीक है ना, और जहर बरसने लगता है, और सारे जितने लोग यहाँ होते हैं सब खत्म हो जाती है पूरी पृथ्वी, जिसे हम दुनिया कहते हैं, ये दुनिया बचेगी नहीं, ये सब खत्म हो जाएगी, ये पूरा कल्प काल है वो। खैर कल्प काल की चर्चा अपने को नहीं करनी है हमें तो, हाँ सागर की बात बतलाता हूँ मैं। हाँ हाँ नहीं, छठवे के अंत में, छठे के अंत में खत्म होगी। हाँ, आपका प्रश्न बहुत सही है बिल्कुल, लेकिन ये जो प्रलय आती है ना छठवें के अंत में, इस प्रलय में ये लोक खत्म नहीं होता पूरा, जीव भी खत्म नहीं होते सब। सुनो एक सेकेंड, इस लोक में अधो लोक नीचे है, नरक है, उनमें कोई प्रलय नहीं आती। ऊर्ध्व लोक ऊपर है, वहां कोई प्रलय नहीं आती। मध्य लोक बहुत बड़ा है, अभी अपन चलेंगे दूसरे सेशन में मध्य लोक में, तब अपन देखेंगे मध्य लोक कितना बड़ा है, और उसमें से कितना सा पार्ट है जहां प्रलय आती है। प्रलय इज जस्ट लाइक, समझिए आप, छोटे रूप में हम देखें तो सुनामी, तूफान। आप कहेंगे साहब ये पृथ्वी तो आपने शाश्वत बतलाई थी, और हम तो देख रहे हैं इधर जापान में तबाही हो गई है, इधर ये हो गया है, वो देश खत्म हो गया, वो 2 बम डाले थे जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी दोनों चले गए थे, पूरे उड़ गए थे बिल्कुल देशी। तो आप तो कह रहे हो शाश्वत है, शाश्वत तो अकृत्रिम रचना शाश्वत है, ये छोटे छोटे से पार्ट। कल तो हमने कही थी कि मकान बनाया है ना तो रहने वाला शाश्वत है ना मकान शाश्वत है, तो ये तो सब परिवर्तनशील है छोटी छोटी चीजें। अपन बात करेंगे उसके बारे में। हम बात कर रहे थे सागर के संदर्भ में, सागर कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा है सागर, विश्वास नहीं होता हमारे को। पहले एक बार जान तो लो कितना बड़ा होता है। 1000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा। मत करो 1000 की बात, सर के ऊपर से जाएगी। 1 योजन लंबा मानो, 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा गड्ढा करो। लंबाई 1 योजन कितना बड़ा होता है, 4000 कोस, 6000 किलोमीटर लंबा चौड़ा और 6000 किलोमीटर गहरा। अभी कोई बात नहीं, घबराओ मत, इतना बड़ा भी मत करो, व्यवहार योजन मान लो आप। ये तो क्या करें, छोटे और छोटा कर लेते हैं। व्यवहार योजन 4 कोस का होता है, यार हाँ मैं सोच रहा हूँ ये क्या लिखा है यहाँ ऊपर, 2000 कोस लिखा है, 4000 मील है ये। ये तो है प्रमाण योजन। व्यवहार योजन होता है वो होता है 4 कोस का, 4 कोस का 1 योजन। और इस हिसाब से देखते हैं तो 8 मील आता है, 8 मील, 8 मील का 1 योजन होगा, इतना ही मान लो आप। 8 मील लंबा, 8 मील चौड़ा और 8 मील गहरा हमने गड्ढा किया। और उस गड्ढे में देखो लंबाई चौड़ाई में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब 8 मील गहराई की बात करते हैं तो आपका अमेरिका पूरा बचेगा नहीं, पूरा उस गड्ढे में समाहित हो जाएगा। पूरा अमेरिका की बात करता हूँ। हाइट कितनी है और इसको ठंडा करेंगे, अभी जैसे मान लीजिए अपन बिल्डिंग की बात करें किसी की भी, तो मान लो 15 माले की बिल्डिंग है और उसको यदि जमीन पर फ्लैट करें तो कितना, 1/2 इंच के अंदर फैल जाती है वो, तो कितना सा होगा सब, इतना स्पेस थोड़ी ना आएगा, उसको तो डाउन करना है ना सबको। तो अभी क्या करना है, इतने लंबे चौड़े और इतने गहरे गड्ढे में उत्तम भोग भूमि के भेड़ के बच्चे के बाल, तत्काल जन्मे हुए के 7 दिन के भेड़ के बच्चे के बाल, और उन बालों में जिस बाल का दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, ऐसे बालों के पीस करके हम उस गड्ढे को पूरा भरें। ये उत्तम भोग भूमि के भेड़ के बच्चे के बाल क्यों कही है, मैं सोचता था ऐसा कि ऐसा क्यों कहा है, लेकिन जब रिसर्च की देखा उसके बारे में तो शास्त्रों में उल्लेख मिला, हमारा जो बाल है, ये जो बाल दिखता है ये इतना मोटा है ये बाल कि हाथ से पकड़ने पर 2 उंगलियों के बीच में महसूस करने में आता है। इस बाल की जो थिकनेस है, इस बाल की जो मोटाई है, इस मोटाई के 512 हिस्से करो, इतना पतला बाल होता है उत्तम भोग भूमि का बाल। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, मैं आपको बता सकता हूँ सिद्ध करके कि 512 किस तरह से होंगे। इस बाल की मोटाई के, लंबाई के नहीं, आप कहेंगे साहब बाल के तो कौन से बाल के, लेडीज का के जेंट्स का, फिर कितना लंबा, कोई 1 फिट का होगा, कोई 6 इंच का होगा, कोई 8 इंच, नहीं 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 ऐसे लंबाई की बात नहीं कर रहे, उसकी मोटाई की बात कर रहे हैं, थिकनेस। और जिसका दूसरा हिस्सा, जिसका दूसरा पार्टी नहीं हो सके, उससे हमने उसको भरा है, और भरने के बाद में इतना भरो इतना भरो इतना भरो कि हमारे चक्रवर्ती की सेना उसके ऊपर से घुमा दो, बाल थे ना ठसाठस भर दिया उसको। और ऐसा भर देने के बाद में 100-100 साल में उसमें से एक एक बाल निकालो, क्या 100-100 साल में एक एक बाल निकालते रहे, 100-100 साल में एक एक बाल निकालते रहे, कब खाली हो जाएगा वो, महेंद्र भाई 4-5 मिनट लगेंगे इसको समझने में। हाँ तो हाँ तो मतलब जब ये बस सागर खत्म करके खत्म करता हूँ, अरे सागर कब खत्म होगा पहले देख तो लो। सागर खत्म करना है हमारे को 5 मिनट में, और हम कह रहे हैं 100 साल में एक बाल निकालो, फिर 100 साल में दूसरा बाल, फिर 100 साल में तीसरा बाल, फिर 100 साल में चौथा बाल, ऐसे करते 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 100-100 साल में करते हुए जब वो गड्ढा पूरा खाली हो जाएगा तो उसे शास्त्रों में कहा है एक व्यवहार पल्य, व्यवहार पल्य, प आधा ल और य, 100-100 साल में एक एक बाल निकालने पर। अब क्या करें, एक व्यवहार पल्य हुआ है, उसके बाद में फिर उस गड्ढे को भरो और भर करके 100 100 साल में एक एक बाल निकालो। जब वो पूरा गड्ढा गड्ढा भर करके पूरा जब वापस खाली हो जाएगा 100 100 साल में एक एक बाल निकालने पर, तो हुए हैं 2 व्यवहार पल्ले। फिर गड्ढे को भरो खाली करो, भरो खाली करो, भरो खाली। अरे भरना खाली करना नहीं है, 100 100 साल में एक एक बाल निकालना है। ऐसे जब करते जाए करते जाए करते जाए 100 100 साल में एक एक बाल निकालने की प्रक्रिया, एक बार खाली हुआ, 2 बार खाली हुआ, 3 बार खाली हुआ, 4 बार खाली हुआ, असंख्यात बार जब ऐसे व्यवहार पल्ले पूरे हो जाते हैं तो एक होता है उद्धार पल्ले। सागर नहीं, माने क्या कह रहे हैं, अभी व्यवहार पल्ले की बात कही थी और व्यवहार पल्ले के बाद में जब असंख्यात व्यवहार पल्ले पूरे हो गए तो असंख्यात व्यवहार पल्ले पूरे करने के बाद में जो हुआ उसका नाम है एक उद्धार पल्ले। देखो 100 100 साल में एक एक बाल निकालते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और जब पूरा हो गया असंख्यात संवर्ष लगेंगे इसके अंदर, तो एक हो गया व्यवहार पल्ले। ऐसे असंख्य व्यवहार पल्ले हो जाएं तो असंख्य व्यवहार पल्ले का होता है एक उद्धार पल्ले। अब वापस शुरू करना उसी गड्ढे से, असंख्यात बार वही फिर भरो खाली करो, भरो खाली करो, भरो खाली करो, 100 100 साल में एक एक बाल निकालते हुए, असंख्यात बार फिर जब पूरा हो जाए तब होंगे 2 उद्धार पल्ले। फिर असंख्यात बार गड्ढा भरेगा, खाली होगा, असंख्यात 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 वर्ष जिसमें लगेंगे, जब वो होगा तब होंगे 3 उद्धार पल्ले। फिर असंख्यात व्यवहार पल्ले होंगे तो 4 उद्धार पल्ले, फिर 5 उद्धार पल्ले। ऐसे बढ़ते बढ़ते असंख्य उद्धार पल्ले जब होते हैं तो एक होता है अद्धा पल्ले। अरे भाव क्या बात कर रहे हो आप, अद्धा पल्ले। ऐसे अद्धा पल्ले एक बार नहीं, अभी वापस वहीं से चलना व्यवहार पल्ले से, असंख्यात व्यवहार पल्ले, फिर एक उद्धार पल्ले, फिर असंख्यात व्यवहार पल्ले, फिर असंख्यात व्यवहार पल्ले, फिर असंख्यात व्यवहार पल्ले, 5 उद्धार पल्ले हुए। ऐसे असंख्यात उद्धार पल्ले हो जाएंगे तो एक अद्धा पल्ले होगा, और असंख्यात अद्धा पल्ले नहीं, अब नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले बराबर एक सागर। अरे वाह क्या बात करते हैं, एक सागर की बात कर रहे हैं अभी आप। ऐसे एक सागर नहीं, ऐसे 33 33 सागर की आयु नरक गति के जीवों की पूरी भी होती होगी क्या कभी? असंख्यात असंख्यात वर्ष हमारे गले नहीं उतरती है ये बात प्रज्ञेश भाई। सागरों की आयु कहाँ गले उतरेगी? असंख्यात फिर असंख्यात फिर असंख्यात से गुणा से 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर हमारे गले नहीं उतरती। विश्वास नहीं होता, नहीं होता ना विश्वास, सच बताओ भरोसा नहीं होता ना। सर्वज्ञ के आधार पर भरोसा है, लोगों को भरोसा नहीं होता है। दिमाग के ऊपर से जाती है सागर की चर्चा में, सागर तो सागर ही है। एक बार क्या हुआ, छोटी सी घटना बतला करके बात खत्म करता हूं मैं। निगोदिया जीवों में सभा चल रही थी, निगोदिया जीव है ना, उनकी सभा चल रही थी, क्लास चल रही थी, और उन सभी निगोदिया जीवों में से एक निगोदिया जीव खड़ा होकर माइक हाथ में लेकर समझा रहा था दूसरे निगोदिया जीवों को। क्या समझा रहा था कि हे निगोदिया भाइयों, तुम जानते हो मनुष्य गति के जीवों की आयु कितनी होती है? कितनी होती है हमें तो पता नहीं है साहब, कोई बरसों बरसों में सुनी है कोई, कितनी है, कितनी होती है आप समझा दो। तो उस निगोदिया ने समझाना चालू किया कि देखो भाई लोगों, अपन लोगों की जितनी उम्र है ना, क्या अपनी जब 25 पीढ़ियां बीत जाती है, एक श्वास में 8 10 बार की आयु है ना उनकी, और श्वास कितना बड़ा होता है, नाड़ी को धड़कने जितना काल, उसका नाम है श्वासोश्वास। तो कितने, 1 मिनट में, मतलब पौन मिनट, मतलब क्या करेंगे, पौन सेकंड में एक बार धड़कती है, ऐसा समझ लो आप, पौन सेकंड में एक बार धड़कती है, तो पौन सेकंड में 18 बार जन्म मरण हो जाता है, तो एक सेकंड में 25 बार जन्म मरण होता है ऐसा मान लो। वो समझा रहा था अपनी 25 पीढ़ियां बीत जाती है तब तो होता है 1 सेकंड, और ऐसा 1 सेकंड एक बार पूरा हो, ऐसा 1 सेकंड दूसरी बार पूरा हो, ऐसा 1 सेकंड तीसरी बार पूरा हो, ऐसे करते 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 जब 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं तो बीच में एक बोला होता होगा बर्थ, अरे तू चुप रहे अभी कौन से बर्थ की बात करता है, अभी तो हुआ 1 मिनट। फिर दोबारा वहीं से शुरू करना, कहां से? अपनी 25 पीढ़ियां 60 बार बीत जावे तो होता है कितना? एक मिनट और। ऐसे एक एक मिनट करते हुए जब 60 मिनट पूरे होते हैं जनाब, तब तो बर्फ, अरे तू बर्फ तो चुप रहे अभी, जो तो एक घंटा हुआ है कि फिर दोबारा वहीं से चालू करना, और बढ़ते बढ़ते ऐसे एक एक सेकंड करते हुए, एक मिनट और एक एक मिनट करते हुए, एक घंटा और एक एक घंटा करते हुए जब 24 घंटे हो जाते हैं, तो एक दिन और एक एक दिन करते हुए जब 30 दिन और 12 महीने होते हैं, तो एक वर्ष, और ऐसे एक वर्ष की नहीं, ऐसे 100-100 वर्षों की आयु होती है मनुष्य गति के जीवों की। बीच में से कुछ नारकी निगोदिया खड़े हो गए और हट, सब गप्पे हैं, बेकार की बातें, इतना भी कोई हो सकता है क्या? कैसा लगता है आपको? लेकिन होता है कि नहीं होता है? ये सच्चाई है, हम लोग भोग रहे हैं जीव को, निगोदिया जीवों को हमारी आयु पर भरोसा नहीं होता, और हमारे को इसी तरह से देवों और नारकियों की आयु पर भरोसा नहीं होता। ये सब भरोसे के विषय हैं, श्रद्धा के विषय हैं, श्रद्धा से ही सम्यक होता है, ऐसा कहा है उमा स्वामी आचार्य देव ने, आचार्य कुंद स्वामी ने। हम सभी भरोसा करें, विश्वास करें, और इसके विश्वास पूर्वक ज्ञान का विश्वास करें, और ज्ञान के विश्वास पूर्वक ज्ञायक का विश्वास और आत्मा की श्रद्धा पूर्वक सभी दुखों से मुक्त हुए। इसी भावना से मैं बात को विराम लेता हूँ। अभी भोजन के बाद में हम दोबारा दूसरे सेशन के लिए यहाँ बैठने वाले हैं।